ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 जनवरी 2025 के लिए है। विषय धार्मिक संस्कार। स्वर्णपथ, प्रेरितों के काम। हे प्रभु, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? उत्तरदायी अध्ययन अब्रानियों। सो हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक के नियन विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र के नियन उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें, सो यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। गिनती। तब इसराइली सिनाई के जंगल में से निकले। गिनती। फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब वो मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के पुरानियों में से 70 पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस खाने को दूंगा कि वो महीने भर तक खाते रहेंगे। क्या वो सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समंदर से बटेरे उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर ले आई। यशाया। देख, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगत हों। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलोख के कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गईं? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धोया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कई फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्बत का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे जिन दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ गई। उसने उनसे कहा, ये तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। लुका। खमीरी रोटी का पर्व जो फिसा कहलाता है निकट था। जब घड़ी पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार करते हैं वो उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। वरुण जो तुम में बड़ा है वो छोटे के नियन और जो प्रधान है वो सेवक के नियन बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नियन हूं। रोमियो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। क्योंकि हाकम अच्छे काम से नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकम से न डर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। इफिसियों। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो जो ईश्वर की इच्छा या ईश्वरीय विज्ञान की मांगों को जानता है और उनका पालन करता है, ईर्ष्या की शत्रुता को जन्म देता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है वो प्रेम से तारित होता है। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है, बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक उद्देश्य, विश्वास से परे एक बिंदु, सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो स्वस्थ्य और पवित्रता का रास्ता है। हमें हुरैब की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जहां परमेश्वर प्रकट होता है और सभी आध्यात्मिक भवन की आधारशिला पवित्रता है। आत्मा का बपतिस्मा, मांस की सभी अशुद्धियों के शरीर को धोना, ये दर्शाता है कि शुद्ध हृदय ईश्वर को देखता है और आध्यात्मिक जीवन और उसके प्रदर्शन के करीब पहुंचा रहा है। जब उसमें मानवीय तत्व परमात्मा से संघर्ष करता है, तो हमारे महान शिक्षक ने कहा, मेरी नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो। अर्थात मांस को नहीं परंतु आत्मा को मुझ में दर्शाया जाए। ये आध्यात्मिक प्रेम की नई समझ है। ये मसीह या सत्य के लिए सभी कुछ देता है। ये अपने दुश्मनों को आशीर्वाद देता है, बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को मिटाता है, अत्याचारों और पापों से मृतकों को उठाता है और हृदय में नम्र गरीबों को सुसमाचार सुनाता है। मानव इच्छा शक्ति विज्ञान नहीं है। मानव इच्छा शक्ति तथाकथित भावतिक इंद्रियों से संबंधित है और इसका प्रयोग निंदनीय है। बीमारों को स्वस्थ होने की इच्छा करना क्रिश्चियन साइंस का आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध पशु चंबुकत्व है। मानव की इच्छा शक्ति मनुष्य के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ये निरंतर बुराई उत्पन्न करती है तथा यथार्थवाद में इसका कोई योगदान नहीं है। सत्य ना के भावतिक इच्छा वो दिव्य शक्ति है जो रोग को कहती है, शांति, शांत रहो। इच्छा शक्ति सभी बुराइयों में सक्षम है। वो कभी बीमारों को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि वो अधर्मियों की प्रार्थना है, जबकि भावना का अभ्यास आशा, विश्वास, प्रेम धर्मियों की प्रार्थना है। इंद्रियों की बजाय विज्ञान द्वारा शासित ये प्रार्थना बीमारों को ठीक करती है। कई लोग कल्पना करते हैं कि क्रिश्चियन साइंस में शारीरिक उपचार की घटनाएं मानव मन की क्रिया का केवल एक चरण प्रस्तुत करती हैं, जिसकी क्रिया किसी अस्पष्ट तरीके से रोग के उपचार में परिणित होती है। इसके विपरीत क्रिश्चियन साइंस तार्क पूर्ण ढंग से समझती है कि अन्य सभी रोग आत्मिक विधियां पदार्थ में मानवीय विश्वास का फल हैं, आत्मा के नहीं, बल्कि शारीरिक मन के कार्यों में विश्वास का फल हैं, जैसे विज्ञान के आगे झुकना ही होगा। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से इससे पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्धभाविक रूप से गायब हो जाते हैं और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगा देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है बल्कि सर्वज प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत है। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुखद है कि व्याख्या अंश ईश्वरीय सेवा आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सर्वजनिक पूजा का मतलब है। उसका घाघ उदाहरण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को बहाल करना ही नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना भी था। वो परमेश्वर से सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। उसके उत्पीड़ितों को उद्देश्य और गर्व, ईर्ष्या, क्रूरता और प्रतिशोध था जो भावतिक यीशु को दिया गया था, लेकिन उसका लक्ष्य ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम था जिसने उनकी कामुकता को फुटकार लगाई। यीशु नहेस्वर्थ था। उनकी आध्यात्मिकता ने उन्हें कामुकता से अलग कर दिया और स्वार्थी भावतिकवादी को उनसे घृणा करने के लिए प्रेरित किया, परंतु ये आत्मिकता ही थी जिसने यीशु को बीमारों को ठीक करने, बुराई को दूर करने और मरे हुओं को जिलाने में सक्षम बनाया। क्योंकि मानव निर्मित प्रणालियां इस बात पर जोर देती हैं कि मनुष्य बीमार और बेकार हो जाता है, पीड़ित होता और मर जाता है, सभी ईश्वर के नियमों के अनुरूप होते हैं, तो क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? क्या हम एक ऐसे अधिकारी पर विश्वास करते हैं जो पूर्णता से संबंधित भगवान की आध्यात्मिक आज्ञा को स्वीकार करता है? एक अधिकार जो यीशु ने झूठा साबित किया। उसने पिता की इच्छा पूरी की। उसने इसके बचाव में बीमार को ठीक किया जिसे भावतिक कानून कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर के कानून मन के कानून के अनुसार। जैसे पौलुस ने प्राचीन काल में विश्वासघातियों के विषय में पूछा था, वैसे ही वर्तमान समय के रबी हमारे उपचार और शिक्षा के विषय में पूछते हैं, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अन्न आधार करते हैं? जबकि हमारे पास सुसमाचार है और हमारे मालिक ने इसका विपरीत उपचार करके भावतिक कानून को रद्द कर दिया, हम मालिक के उदाहरण का पालन करने का प्रस्ताव करते हैं। हमें भावतिक नियमों को आध्यात्मिक नियमों के अधीन करना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के दो आवश्यक बिंदु हैं कि ना तो जीवन मरता है और ना ही मनुष्य मरता है, और कि ईश्वर बीमारी का लेखक नहीं है। यीशु के तथाकथित अनुयानी कब उसके सभी मार्गों में उसका अनुसरण करना और उसके महान कार्यों का अनुकरण करना सीखेंगे। जिन लोगों ने उस धार्मिक व्यक्ति की शहादत प्राप्त की थी, वो उसके पवित्र जीवन को एक विकृत सिद्धांतिक मंच में बदल देना चाहते थे। हो सकता है कि आज के मसीही उस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाए। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के दावों पर जोर देते हुए मैं कोई असंभव बात नहीं पूछता। विज्ञान और मसीही धर्म के माध्यम से मानव जाति में सुधार आएगा। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। तुम्हारी इच्छा पृथ्वी में हो जैसे कि स्वर्ग में है। जैसा कि स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्विच है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सने को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।